श्यामली कुर्सी पर पीछे झुकी, एक लंबी सांस ली। एक तरफ अक्षरा का झूठ और दूसरी तरफ ये घर के अंदर का खेल। उसने आंखें बंद की ही थीं कि फोन की स्क्रीन चमकी। अविनाश कॉलिंग। उसने कुछ सेकंड फोन को देखा, जैसे तय कर रही हो उठाना चाहिए या नहीं। फिर उसने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, श्यामली, उधर से आवाज आई, थोड़ी भारी, थोड़ी टूटी हुई। मुझे माँ से मिलना है। श्यामली सीधी बैठ गई। तो मिल लीजिए, उसने ठंडे लहजे में कहा। अविनाश ने तुरंत जवाब दिया, तुम जानती हो मैं हवेली गया तो विश्वनाथ मुझे अंदर नहीं आने देगा। एक सेकंड का सन्नाटा, फिर उसकी आवाज और नरम हो गई। प्लीज तुम उसे मना लो, मुझे बस माँ से मिलना है। श्यामली की भौहें हल्की सी कुड़ गईं। देखिए, उसने सीधा कहा, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आपको इतना ही ख्याल है तो विश्वनाथ जी से ही बात कीजिए। उधर से एक लंबी सांस की आवाज आई। फिर अविनाश बोलने लगा, धीरे लेकिन गहराई से, तुम समझ नहीं रही हो। जब सब कुछ हाथ से निकलने लगता है ना, तब एहसास होता है कि माँ का होना क्या होता है। उसकी आवाज में दर्द था, या शायद दर्द का दिखावा। मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब समझ आ रहा है कि सब कुछ माँ की वजह से ही था। श्यामली चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की परेशानी साफ दिख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी, ये असली पछतावा है या एक और चाल। श्यामली, अविनाश फिर बोला, बस एक बार मुझे उनसे मिलवा दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस एक बार देख लूं। श्यामली ने आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। कॉल कट। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। श्यामली कुछ देर तक फोन को देखती रही, फिर धीरे से उसे टेबल पर रख दिया। यह आदमी सच में बदल रहा है या ये भी एक गेम है? वहीं दूसरी तरफ अविनाश अपनी कार में बैठा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी जो उसके शब्दों से बिल्कुल अलग थी। उसने फोन को साइड में फेंका और स्टीयरिंग पर उंगलियां थपथपाईं। विश्वनाथ, उसने धीरे से कहा, अब तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूं तुम्हें तोड़ने के लिए। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला था। दूसरी तरफ विश्वनाथ का केबिन। वो अपनी कुर्सी पर बैठा था, सामने उसका पर्सनल असिस्टेंट खड़ा था। टेबल पर फाइल्स फैली हुई थीं और विश्वनाथ एक एक कर साइन कर रहा था। ये लास्ट है सर, असिस्टेंट ने कहा। विश्वनाथ ने बिना ऊपर देखे साइन किया। ओके, आप जा सकते हैं। असिस्टेंट बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही दो सेकंड का सन्नाटा, तभी दरवाजा फिर खुला। श्यामली अंदर आई। विश्वनाथ ने नजर उठाई, कुछ काम था? उसकी आवाज हमेशा की तरह सीधी और ठंडी थी। श्यामली कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अभी अविनाश जी का फोन आया था। ये सुनते ही विश्वनाथ का पेन रुक गया। उसकी नजरें सीधे श्यामली पर टिक गईं। क्या कहा उसने? श्यामली ने बिना घुमाए फिराए सब कुछ बता दिया। वो अपनी माँ से मिलना चाहते हैं, कह रहा था अगर वो हवेली आए तो आप उसे अंदर नहीं आने देंगे, इसलिए मैंने। वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, मैंने मना कर दिया। एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड, फिर विश्वनाथ अचानक खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी पीछे हल्की आवाज के साथ खिसकी। तुमने उससे बात क्यों की? उसकी आवाज अब ठंडी नहीं थी, उसमें गुस्सा साफ था। श्यामली चौंकी, लेकिन खुद को संभाल लिया। उसने कॉल किया था तो मैंने रिसीव कर लिया, इसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता उसने कॉल किया या नहीं। विश्वनाथ ने बीच में ही काट दिया। उसकी आंखें अब तेज हो चुकी थीं। मैंने साफ कहा था उससे कोई कांटेक्ट नहीं। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। श्यामली ने उसकी आंखों में देखा, अब उसके अंदर भी हल्की जिद जाग चुकी थी। मैंने कोई गलत बात नहीं की, उसने धीमे लेकिन साफ लहजे में कहा, और वैसे भी वो अपनी माँ से मिलना चाहते हैं, इसमें ड्रामा बंद करो। विश्वनाथ फिर से बोल पड़ा। उसकी आवाज और सख्त हो गई। तुम नहीं जानती वो क्या चाहता है। वो सिर्फ मां से मिलने नहीं आ रहा, वो कुछ और प्लान कर रहा है। श्यामली की भौहें से कुड़ी, तो फिर आप इतना क्यों डर रहे हैं? ये सुनते ही एक सेकंड के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। विश्वनाथ की नजरें अब और भी गहरी हो गईं। मैं डर नहीं रहा, उसने धीरे लेकिन भारी आवाज में कहा, मैं बस उसे मौका नहीं देना चाहता। श्यामली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में अब एक और शक पैदा हो चुका था। अविनाश, अक्षरा और अब विश्वनाथ, तीनों कुछ छुपा रहे हैं, उसने मन ही मन सोचा। कमरे में अब दो लोग खड़े थे, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में एक नया तूफान जन्म ले चुका था। रात, हवेली का डाइनिंग हॉल हल्की पीली रोशनी में डूबा हुआ था। टेबल पर खाना सजा हुआ था, लेकिन आज माहौल में वो गर्माहट नहीं थी जो अक्सर इस घर में दिखती थी। तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, बीच में अक्षरा, एक तरफ विश्वनाथ, दूसरी तरफ श्यामली। चम्मच की हल्की आवाजें, प्लेट्स की खनक, बस यही सुनाई दे रहा था। कोई बात नहीं कर रहा था। अक्षरा ने धीरे से नजर उठाई और विश्वनाथ की तरफ देखा। वो बिल्कुल शांत था, चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे वो यहां बैठा ही नहीं हो, बस शरीर है, दिमाग कहीं और। लेकिन जो बात अक्षरा को सबसे ज्यादा अजीब लगी वो ये थी कि विश्वनाथ एक बार भी श्यामली की तरफ नहीं देख रहा था। वही विश्वनाथ जिसकी नजरें अक्सर श्यामली पर टिक जाती थीं, जो बिना वजह भी उससे बात कर लेता था, आज पूरी तरह अनदेखा कर रहा था। अक्षरा के मन में हल्की बेचैनी हुई। यह अचानक क्या बदल गया, उसने मन ही मन सोचा। दूसरी तरफ श्यामली चुपचाप खाना खा रही थी। उसकी आंखें नीचे थीं, लेकिन वो हर चीज महसूस कर रही थी, हर नजर, हर दूरी, हर खामोशी। उसने एक बार हल्के से सिर उठाया, जैसे उम्मीद कर रही हो कि शायद विश्वनाथ उसकी तरफ देखेगा, लेकिन कुछ नहीं। उसका दिल हल्का सा बैठ गया। इतना गुस्सा या फिर कुछ और, उसने खुद से सवाल किया। डिनर खत्म होने तक कोई खास बातचीत नहीं हुई। अक्षरा ने माहौल हल्का करने की कोशिश भी की, दो तीन बार कुछ कहा, लेकिन जवाब छोटे और ठंडे ही आए। और फिर जैसे ही सब उठे, विश्वनाथ ने अचानक अपनी कुर्सी पीछे की और खड़ा हो गया। उसने सीधे अक्षरा की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो, उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दूरी थी। मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूं। अक्षरा एक सेकंड के लिए रुकी, फिर उसका हाथ थाम लिया, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी साफ थी, क्योंकि ये वही विश्वनाथ था जो कभी कभी तो सामने होने पर भी उसे नजरअंदाज कर देता था, और आज खुद आगे बढ़कर उसे कमरे तक छोड़ने की बात कर रहा था। श्यामली ने यह सब देखा और उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी और हल्का सा दर्द थी। ये क्या हो रहा है, उसने मन ही मन सोचा। विश्वनाथ और अक्षरा साथ साथ बाहर निकल गए। रत्ना देवी और अक्षरा के माता पिता भी कमरे की तरफ चले गए। डाइनिंग हॉल में अब सिर्फ श्यामली और सुषमा देवी रह गईं। सुषमा देवी ने कुछ पल तक दरवाजे की तरफ देखा, जहां से दोनों अभी अभी गए थे, फिर धीरे से श्यामली की तरफ मुड़ी। क्या बात है, उन्होंने नरमी से पूछा। विश्वनाथ नाराज हैं क्या? श्यामली एक पल के लिए चुप रह गई। उसने खुद को संभाला, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई। नहीं तो, बस ऐसे ही, उसने नजरें झुका ली। सुषमा देवी ने उसे गौर से देखा, जैसे वो उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आंखें पढ़ रही हों। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, उन्होंने धीमे से कहा। श्यामली ने जवाब नहीं दिया, बस प्लेट उठाकर किचन की तरफ बढ़ गई। इधर हवेली का कॉरिडोर, हल्की लाइट्स और सन्नाटा। अक्षरा और विश्वनाथ साथ चल रहे थे, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी। अक्षरा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। सब ठीक है, उसने आखिर पूछ ही लिया। विश्वनाथ ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ, छोटा सा जवाब। अक्षरा ने कदम धीमे किए, तो फिर इतना चुप क्यों हो? इस बार विश्वनाथ रुक गया। उसने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, जो अक्षरा पढ़ नहीं पाई। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, उसने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। अक्षरा थोड़ा असहज हो गई लेकिन उसने बात बदल दी। ठीक है, वो मुस्कुराई। डॉक्टर ने कहा ना, सब ठीक है, बस कुछ टेस्ट्स और। उसने जानबूझकर वही बात दोहराई, जैसे वो उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती हो। विश्वनाथ ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोला, हाँ, लेकिन इस बार उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। कमरे के सामने पहुंचकर वो रुक गया। अक्षरा अंदर जाने लगी, फिर उसने मुड़कर पूछा,
तुम नहीं आओगे? विश्वनाथ ने सिर हिलाया, मुझे कुछ काम है, और बिना रुके वहां से चला गया। अक्षरा दरवाजे पर खड़ी रह गई, उसके चेहरे पर अब हल्की चिंता थी। ये आदमी सोच क्या रहा है? उधर श्यामली अपने कमरे में थी, दरवाजा बंद, कमरे में हल्की अंधेरा। वो खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। पहले अविनाश, फिर अक्षरा और अब विश्वनाथ। उसने गहरी सांस ली, तीनों कुछ छुपा रहे हैं। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक फैसला था, और अगर सच में अक्षरा प्रेग्नेंट नहीं है तो ये खेल बहुत बड़ा है। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ, उसने जल्दी से उठाया। वही नंबर जिसे उसने कुछ घंटे पहले कॉल किया था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। हाँ, बोलो। उधर से आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, मैडम आपने जो रिपोर्ट्स मांगी थीं वो मिल गई हैं। श्यामली की सांस हल्की तेज हो गई। क्या है उनमें? उसने बिना वक्त गवाए पूछा। दो सेकंड का सन्नाटा, फिर उधर से सिर्फ एक लाइन आई, मैडम अक्षरा प्रेग्नेंट नहीं है। कमरा एक पल के लिए घूम गया। श्यामली ने कुर्सी पकड़ ली, उसकी आंखें फैल गईं। क्या? उसके होठों से बस यही निकला। और उधर से आवाज फिर आई, कुछ रिपोर्ट्स जानबूझकर बदली गई हैं, किसी ने फेक डेटा डाला है। कॉल कट। श्यामली वहीं खड़ी रह गई, उसका दिल तेज धड़क रहा था। अब सब कुछ साफ हो रहा था। अक्षरा, उसने धीरे से कहा, तुम खेल रही हो। उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कान आई, लेकिन ये मुस्कान खतरनाक थी। लेकिन अब ये खेल मैं खत्म करूंगी। बाहर हवेली के ऊपर अचानक हवा तेज हो गई, जैसे कोई तूफान आने वाला हो।